Log Talk Radio.
IPS News Radio.
Thank you.
IPS News Radio की जानिब से हबीब है आज सब सुनने वालों को सलाम। आज जनवरी की 26 और हमारा उर्दू का प्रोग्राम इतवार बरोज़ इतवार जारी है। हम अपने तमाम सामीन को खुश आमदीद कहते हैं, उन सुनने वालों को भी जिन्होंने अपनी फरमाइशें भेजी हैं। मैं आपको बताता चलूँ, हमारे लाइव स्ट्रीम सुनने के लिए आप इंटरनेट पे www.blogtalkradio.com/IPSNewsNetwork या www.blogtalkradio.com/IPSNewsNetwork या www.spreaker.com/IPSNewsNetwork पे जाके हमारी लाइव स्ट्रीम्स आप सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारा तमाम सोशल मीडिया जिसमें यूट्यूब, iCloud, iTunes, Facebook, LinkedIn, Twitter और दीगर सोशल मीडिया शामिल हैं, वहाँ जाके भी आप हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। अगर आपने हमारा लाइव प्रोग्राम नहीं सुना तो हमारे लाइव प्रोग्राम के ख़त्म होने के आधे घंटे बाद आप हमारे आर्काइव्स पे तमाम प्रोग्राम सुन सकते हैं, जिसके लिए आप किसी भी सर्च इंजन में IPS न्यूज़ रेडियो डालें और सुन लीजिए। अगर आपकी गाड़ी में सेटेलाइट रेडियो रिसीवर मौजूद नहीं है तो आप हमारे प्रोग्राम लाइव सुनने के लिए अपने सेलफोन या घर के फ़ोन से 347-996-3477 डायल कीजिए और आप हमारा लाइव प्रोग्राम 11:30 बजे से 1:30 बजे के दरमियान या 11:30 बजे से 2 बजे तक अपने सेलफोन या घर के फ़ोन पे भी सुन सकते हैं। हमारे तमाम उन सामीन के लिए जो अपनी फरमाइशें भेजते हैं, बाज़ दफ़ा हमारे लिए उसी दिन उनकी फरमाइशें पूरा करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनकी तमाम फरमाइशों को हम पूरा कर सकें। हमारे जिन सामीन ने अपनी फरमाइशें हमें भेजी हैं, हम उनकी फरमाइशें आज पूरी करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं एक बहुत ही खूबसूरत नात पेश करने लगा हूँ जो हमारी बहुत ही मारूफ गुलकारा थी नसीम बेगम, उन्होंने गाई थी, बहुत पुरानी फिल्म है पाकिस्तान की, उसमें ये सबिया बेगम पे पिक्चराइज हुई थी। आप सुनिए सल्लु अलैहि व आलिही।
जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहां था ख्वाब ख्याल ही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहां था ख्वाब ख्याल ही, सल्लु अलैहि व आलिही,
नफसीन है
سامعین آپ ابھی سن رہے تھے نسیم بیگم کی آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نذرانہ عقیدت صلو علیہ وآلہ، بہت ہی اپنے زمانے کی معروف نعت، اور ہمارے بہت سارے سننے والوں نے اس نعت کو دوبارہ نشر کرنے کی خواہش کی تھی، جس میں ہیوسٹن سے ڈیلس ٹیکسس، سن انتانیو ٹیکسس، اپوپکا اورنج کاؤنٹی فلوریڈا سے، سیمینول اورنج کاؤنٹی، اور نیو یارک سے ہمارے کچھ سننے والوں نے اس کو سننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یہ آئی پی ایس نیوز ریڈیو کی اردو نشریات ہیں، حبیب حیات آپ کا ہوسٹ، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ کا دن خوشگوار گزرے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تمام سامعین کی فرمائشوں کو اسی دن پورا کرنے کی کوشش کریں، اگر اس دن نہیں پوری ہوتی تو اگلے دن ہم ان فرمائشوں کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام سامعین ہماری اس مجبوری کو سمجھیں گے اور اپنی جس دن بھی ان کی فرمائش نشر ہوتی ہے اس کو سنیں گے۔ ہم ان تمام سامعین کے شکر گزار ہیں جو ہم سے آن لائن یا لائیو ہمارے پروگرام سنتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی سجیشنز آرا ہمیں بھیجتے ہیں، ہمیں آپ کی آرا بہت اہم لگتی ہیں کیونکہ ہم ان کی روشنی میں اپنے پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے سننے والے سامعین نے ایک اور گانے کی فرمائش کی ہے، اور اس کو بھی ہم دوبارہ نشر کر رہے ہیں، اور آج میں اپنے سامعین سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت ہی دل گرفتا ہوں، ہمارا ایک بہت ہی عظیم دوست بھائی ہم میں آج نہیں ہے، حسن مرتضیٰ، کراچی میں ان کا رات انتقال ہو گیا۔ وہ میرا بہنوئی بھی تھا، میرا دوست بھی تھا، میرا بھائی بھی تھا، بہت ہی دل گرفتگی صورتحال سے میں پروگرام تو کر رہا ہوں اس لیے کہ پروگرام نہیں روکا جا سکتا، اور اس کی لیے میں ایک نغمہ پیش کر رہا ہوں جو آج خصوصی طور پہ میری پسند ہے۔
چلے آج تم جہاں سے، ہوئی زندگی پرائی، تمہیں مل گیا ٹھکانا، ہمیں موت بھی نہ آئی۔ ہم کو بھی ساتھ لے لے رے، ہم کو بھی ساتھ لے لے، ہم رہ گئے اکیلے، وہ دور کے مسافر، ہم کو بھی ساتھ لے لے رے، ہم کو بھی ساتھ لے لے۔ کام کی یہ دنیا جو زندگی سے کھیلے رے، ہم کو بھی ساتھ لے لے، ہم رہ گئے اکیلے، وہ دور کے مسافر، ہم کو بھی ساتھ لے لے رے، ہم کو بھی ساتھ لے لے۔ چاروں طرف لگے ہیں बर्बादियों के मेले रे हमको भी साथ ले ले हम रह गए अकेले ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे हमको भी साथ ले ले हम रह गए
آپ سن رہے تھے سامعین ابھی محمد رفیع کی آواز میں فلم اڑن کھٹولا اور یہ گانا دلیپ پہ پکچرائز ہوا تھا دلیپ کمار ہمارے بہت معروف اداکار محمد یوسف خان جن کا اصل نام ہے اور برصغیر پاک و ہند کے جانے پہچانے اور بہت ہی دل پسند اداکار یہ فلم اڑن کھٹولا تھی جو 1957 میں بنائی گئی تھی ہمارے اگلے گانے کے لیے ہمارے پاس فرمائشیں آئی ہیں اور ہمارے فرمائش کرنے والوں میں بمبئی نیو دہلی احمد آباد کھریالہ بھارت سے کراچی پاکستان لاہور ملتان سرگودا شیخوپورہ لاہور کاموکی لاہور سے رائیون لاہور سے اور لندن سے ہمیں ہمارے چاہنے والے محمد شیخ انہوں نے فرمائش بھیجی ہے کہ میں یہ گانا ان کو ضرور سنواؤں ہمارے پاس یہ گانا ہمارے آرکائیو میں موجود تھا تو محمد ہم آپ کی خواہش پہ آج یہ گانا آپ کو ابھی سنوا رہے ہیں اور ہمارے جو دیگر سامعین نے اپنی فرمائشیں بھیجی ہیں ہم ان کی فرمائشیں بھی آج پوری کریں گے آج ہی پروگرام کے دوران تو ہمارے تمام سامعین کے لیے جنہوں نے اس گانے کی فرمائش بھیجی یہ اپنے زمانے کا بہت ہی معروف گانا رونا لیلا نے گایا ہے اور سنتوش اور رانی کے اوپر پکچرائز ہوا آپ سنیے سامین آپ سن رہے تھے رونا لیلا کی آواز میں آپ دل کی انجمن میں حسن بن کر آ گئے. یہ فلم انجمن کا گانا تھا جو سنتوش کمار مرحوم اور رانی مرحومہ پہ پکچرائز ہوا تھا. آپ نے یہ گانا سنا, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس گانے سے محظوظ ہوئے ہوں گے. ہم اگلا نغمہ جو پیش کر رہے ہیں, ہمارے بہت سارے سامعین نے اس نغمے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم ان کو سنوائیں. یہ بہت ہی مقبول نغمہ ایک زمانے کا, عدنان سمیع گلوکار اس کے, اور اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو اس کو مل گیا. تو سنیے. سامین آپ سن رہے تھے ابھی عدنان سمیع کو اے خدا جس نے کی جستجو اس کو مل گیا تو. مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام سامین نے جنہوں نے اس گانے کی فرمائش کی تھی انہوں نے یہ گانا سن لیا ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام سامین ہمیں اپنی آرا اور اپنی فرمائشیں بھیجتے رہیں گے, اور ہم پوری طرح کوشاں ہیں کہ ان آرا کی روشنی میں اور ان فرمائشوں کے پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. میں اپنے سامعین کو ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. کل ہم نے ایک امریکن مسلم کمیونٹی سینٹرز پہ پروگرام کیا تھا, ان کے انتخابی کمیٹی کی ایک اجلاس کی رپورٹ دی تھی. اس میں ایک نام غلطی سے غلط پڑھا گیا, وہ خالد حامد نہیں ہیں بلکہ نوید حامد ہیں, اور وہ ٹرسٹی تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا اپنے اختلافات کی بنا پہ ایم سی سی کے الیکشن کمیٹی میں. الیکشن پہ اختلافات, ان کا موقف ہے کہ پانچ یا چھ وہ ٹرسٹی ممبرانز, وہ پرانے ممبرانز اپنی بیویوں کو اس الیکشن میں شامل کر رہے ہیں, جس سے یہاں کا نظام ایک فیملی کنٹرولڈ آرگنائزیشن بن جائے گا. جبکہ عاطف فرید جو چیئرمین ہیں اے ایم سی سی کے, انہوں نے ان کے جواب میں اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے ایم سی سی کا کانسٹیٹیوشن, اس کی کلاز اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کسی بھی خاندان کے کتنے بھی افراد چاہے ہوں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اگر کچھ لوگوں کا اعتراض ہے تو وہ اس انتخابات کے بعد جنرل باڈی کونسل بلا کے اور اس میں اس کلاز کو امینڈ کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. ہمیں امید ہے کہ اے ایم سی سی جو لانگ ووڈ اورلینڈو میں بہت ابھرتا ہوا ایک مسلم کمیونٹی کا ادارہ ہے, مسجد ہے, اور اس میں اس قسم کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. آپس کی باہمی تفہیم افہام سے اس قسم کے اختلافات ختم کر لیے جائیں گے, اور یہ ادارہ ترقی و ترویج کرتا رہے گا. اس کے ساتھ ہی سامعین, میں ایک اور نغمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے لیے ہمیں کافی فرمائشیں موصول ہوئی ہیں, جن میں ٹورنٹو کینیڈا, مونٹریال کینیڈا, ہیلیفیکس کینیڈا, ونکوور کینیڈا, مسیساگا کینیڈا, اور لندن برطانیہ, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लिवरपूल। इसके अलावा हमें इसकी फरमाइश हैरानकुन सूरत हाल है काहिरा मिस्र से हमारे एक सामीन अहमद सलाहुद्दीन, उन्होंने लिखा है कि जी ये गाना आप ज़रूर हमें सुनवाएं। और हमारे कुछ दुबई से पाकिस्तानी तारकीन वतन ने अपनी फरमाइशें भेजी हैं और फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से इस गाने की फरमाइशें हैं और मुख्तलिफ अमरीका के शहरों से पाकिस्तानियों ने हमें इस गाने को सुनने की फरमाइश की है। और ये गाना मेरा ख़्याल है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा गाना है और ये अहमद रुश्दी ने गाया हुआ है। हम इसको रिपीट कर रहे हैं। इस गाने के लिए हमारे पास मुतादद बार बहुत सारी फरमाइशें आई हैं और हम इस गाने को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इसी चमन में रहो तो।
इसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो। इसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो। खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो। इसी चमन में रहो तुम, अपने प्यार को दिल से लगा के जीनेंगे। ये जहर तुमने दिया है तो हंस के पी लेंगे। जमाना दे ना तुम्हें बेवफाई का इल्जाम। भर में वफा का बकार बन के रहो। खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो। इसी चमन में रहो तुम। के साथ रहो तुम, तुम्हारे साथ हैं हम। तुम्हारा गम है सलामत तो फिर हमें क्या गम। तुम्हारी राह चमक की रहे सितारों से। दयार हुस्न में हुस्न दयार बन के रहो। खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो। किसी चमन में रहो।
सामीन ये थे अहमद रुश्दी, किसी चमन में रहो तुम। आप सुन रहे थे हमारी एक सामिया ह्यूस्टन टेक्सास से, उन्होंने एक सवाल मुझसे किया है कि वो अपनी बेटी के लिए कौन सी सूरा वो पढ़ा करें। मैं उनको अपने तौर पे जो जवाब देना चाहता हूँ वो ये है कि वो अपने तमाम पूरा कुरान ही एक ऐसा नुस्खा है जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरह रहमान आप अगर उसको ज़्यादा पढ़ा करें। हमारे सामीन बाज़ दफ़ा बहुत सारे ऐसे सवाल लिखते हैं जिनमें हम कोई एक्सपर्टीज़ नहीं रखते, लेकिन हम पूछ के उनको बता देते हैं। लेकिन ये एक कोई हतमी सूरत हाल नहीं होती, और अगर वो इस मामले में उनका कोई मसला है तो वो किसी एक्सपर्ट से, प्रोफेशनल से रابطہ करें, जिसके लिए उनको किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, उनसे रابطہ करें ताकि उनको सही जवाब मिल सके। बहरहाल आप वेलकम, आप लोग अपने सवाल भेजते रहें। और जो अगला गाना मैं पेश कर रहा हूँ जी, वो हमारे सुनने वालों ने फरमाइश की है कि मैं उनको ये गाना ज़रूर सुनाऊं, और ये बहुत ही मारूफ गाना है, और हमारे ख़ास तौर पे हमारे सुनने वालों ने मियामी फ्लोरिडा से रज़ा हसन साहब और नदीम सिद्दीकी साहब, इसके अलावा हमारे न्यूयॉर्क से कुछ दोस्तों ने इस गाने की फरमाइश की है, और गाना आप समझ गए होंगे, मेहदी हसन साहब गाया हुआ गाना है, और फिल्म का नाम रंगीला, और रंगीला फिल्म में ये रंगीला के ऊपर ही पिक्चराइज हुआ है। तो गाना आप सुनिए, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ।
एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। के जिस रूप से कलियां भी लजाएं, वो रूप है, है। वो जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माएं घटाएं, मैं खान निगाहों के अदाओं के तराने दे डाल मुझे उसने मोहब्बत के खजाने। हाँ ऐसी ही एक रात थी, हाँ ऐसी ही एक रात थी, ऐसा ही समा था, ये चांद भी पूरा था, जमाना भी जवा था। एक पेड़ के साए में जब इकरार हुआ था, एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। कश्मीर की वादी के वो पुर कैफ नजारे, कश्मीर है, है। लम्हात मोहब्बत के जहां हमने गुजारे, अंगड़ाइयां लेकर मेरी बाहों के सहारे, गुलनार नजर आती थी वो शर्म के मारे, यक तरफन थे हुस्न मोहब्बत के इशारे, उसने भी कई बार मेरे बाल सवारे, एहसास का जज्बात का इजहार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। कुछ रोज कटे यूं भी बुरा वक्त जब आया, कुछ रोज है, है। कुछ रोज कटे यूं भी बुरा वक्त जब आया, उस हुस्न के दिल भी नजरों को फिराया, गुर्बत ने जमाने की निगाहों से गिराया, आ चल मेरे हाथों से मोहब्बत ने छुड़ाया। एक रात को उसने मुझे सोता हुआ छोड़ा, जल्दी वो कहीं प्यार को रोता हुआ छोड़ा, सोया हुआ मैं नींद से जागा जो सवेरे, वो जब न मिली छा गए आँखों में अंधेरे, तकदीर किसी को भी बुरे दिन न दिखाए, लगदार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था है, प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था है, प्यार हुआ था।
सामी ने आप सुन रहे थे मैथी हसन की आवाज़ में बड़ा खूबसूरत नगमा, एक हुसन की देवी से मुझे प्यार हुआ था। हमने अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन की फरमाइश पर ये गाना नशर किया। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने सुन लिया होगा। अगर वो लाइव नहीं सुन सके तो www.blogtalkradio.com/ipsnewsnetwork या YouTube, Facebook और दीगर ट्विटर्स पर जाकर वो ये गाना दोबारा सुन सकते हैं। हमारे आर्काइव्स पे किसी भी सर्च इंजन में आईपीएस न्यूज़ रेडियो डालें और हमारे आर्काइव पे जाके ये गाने आप अगर अपनी फरमाइश किसी वजह से लाइव ना सुन सकें तो आप हमारे प्रोग्राम्स फेसबुक पे, यूट्यूब पे, माई स्पेस, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस, आई क्लाउड और आईट्यून्स पे जाके आप हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं, या आप डायरेक्ट सर्च इंजन पे आईपीएस न्यूज़ रेडियो डालिए और आप हमारे आर्काइव पे जाके ये तमाम प्रोग्राम सुन सकेंगे। डोंट गो अवे, वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सामीन आप आईपीएस न्यूज़ रेडियो का उर्दू प्रोग्राम सुन रहे हैं। आज इतवार जनवरी की 26 तारीख हम आपकी खिदमत में हसबे मामूल प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें तमाम वो चीज़ें शामिल हैं जो आप सुनना पसंद करते हैं। हम अपने प्रोग्राम आपकी आरा और फरमाइशों की रोशनी में तरतीब दे रहे हैं। अब वक्त हुआ चाहता है शाजिया मिर्ज़ा जो मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं, फैमिली मैरिज थेरेपिस्ट हैं, वो आपको मुख्तलिफ आपके माशरती और नफसियाती मसाइल पर मशवरे देती हैं और अपना प्रोग्राम पेश करती हैं। आज वो जिस मौजू पर आपको अपनी गुफ्तगू सुनाएंगी वो है रिबेलियन एटीट्यूड, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम उनका एज यूजुअल पसंद आएगा और आप अपने सवालात हमें इस पे भेजेंगे जो हम उनसे करेंगे। और अगर आपके कोई इस माशी या नफसियाती मसाइल पर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें बजरिया ईमेल हमारे लाइव नंबर पर 347-996-3477 पे करके आप पूछ सकते हैं। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, स्काइप पे मुझे आप एज यूजुअल जैसे आप अपने सवालात भेजते हैं आप भेज सकते हैं। तो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ शाजिया मिर्ज़ा का प्रोग्राम जो हमारी रेगुलर फीचर हैं इस प्रोग्राम का। वो मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं, फैमिली मैरिज थेरेपिस्ट हैं। आज उनका मौजू है रिबेलियन एटीट्यूड और सुनिए आप लोगों के लिए हाजिर है।
आपको मज़ीद डिटेल्स के मुताबिक बताएंगी। जी शादिया,
सो
let's see what is rebellious attitude. What does it mean? First of all, it's a very subjective thing. There are many examples of rebellious attitude and rebellious personality. Let's discuss two kinds of rebellious attitudes. Positive rebellious comes from knowing what you believe and is sticking to it no matter what the world around you says. It means deciding for yourself, taking a stand for yourself. And these kind of people are not the followers of rules. They don't like rules. They like to break the rules. So that's why values kya hain ya mazhabi values kya hain. Mera khayal mein agar dono miya biwi baham ittefaq se leke chale aur mutual understanding ho kisi baat mein to koi bhi masla hal kiya ja sakta hai.
Well, hamare Pakistan ke jo maashrati tarz tareeke hain aur maghrib ke jo maashrati taur tareeke hain unme zameen aasman ka farq hai. Jab wahan se koi ladka ya ladki shaadi hoke ya kisi bhi taur pe yahan aati hai to yahan pe palne badhne wali us ladki aur us ladki ki soch mein aur hamare Pakistan se aane walon ki soch mein bahut wazeh farq hota hai. Us farq ko kaise kam kiya ja sakta hai?
यकीनन ये बहुत बड़ा मसला है और ये काफी खानदानों में देखने में आता है कि जो लड़के लड़कियां यहां पले बढ़ते हैं उनकी परवरिश यहां होती है उनके तौर तरीके मुख्तलिफ होते हैं और जरूरी नहीं किसी बुराई के सेंस में हो वो एक मुख्तलिफ हैं वो मुख्तलिफ तरीके से जिंदगी को देखते हैं बनिस्बत उन लोगों के उन लड़के लड़कियों के जो कि पाकिस्तान में परवरिश पाके यहां पर आते हैं. बात सारी वही आ जाती है अगर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली बात है. एक दूसरे की बेसिक रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है. दे नीड टू डिस्कस इट विद ईच अदर. इज देयर समथिंग यू लाइक? आई लाइक दिस. इफ यू लाइक टू यू नो एंगेज योरसेल्फ इन सच ओपननेस. ओपननेस और बेसिक रिस्पेक्ट जो है वो एक दूसरे की बहुत जरूरी है. और अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरी बीवी को ये चीज पसंद नहीं है या मेरे मियां को ये चीज पसंद नहीं है तो देन यू नो ना करें उस चीज को. अच्छा अब थोड़ी सी बात मैं एम मलिक के सवाल के हवाले से ही करना चाहती हूँ. ये एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा मौजू है. जाहिर बात है बहुत सारे लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं. मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ रियलिटी. तो मेरा ख्याल में देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं मियां बीवी एक दो मुख्तलिफ खानदानों से आते हैं, दो मुख्तलिफ दुनियाओं से आते हैं बासखत, लेकिन जब वो एक जिंदगी शुरू करते हैं तो जाहिर है कि जो एक शौहर है वो अपनी पूरी एक जिंदगी 20-25 साल की जिंदगी जो भी उसकी पहले की जिंदगी होती है, जो उसकी तरबियत होती है, जो उसकी शख्सियत होती है, वो अपना बैगेज लेके एक तरह से आता है. इसी तरीके से जो लड़की होती है वो भी अपना एक बैगेज इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव वर्ड इट इज रियलिटी कि वो एक तरह से बैगेज ही लेके आते हैं अपना. अच्छा बाज वक्त ये होता है, मैं एक थोड़ा सा मेटाफर के तौर पे एग्जांपल देना चाहती हूँ. हम जब एक घर बनाते हैं घर के मुख्तलिफ कमरों में मुख्तलिफ चीजें सजाते हैं. ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, उसमें मुख्तलिफ सामान होता है. जो आपका किचन है उसमें मुख्तलिफ सामान, जो उसका स्टोरेज है उसका अलग सामान है. हर चीज की एक अलग एक अहमियत है, एक जगह है. अगर हर चीज एक ठिकाने से ना रखी हो और हर चीज एक हैपहैजर्ड तरीके से हर चीज लिविंग रूम में हो तो एक केयास की सूरत पैदा होती है, एक क्लटर की सूरत पैदा होती है. ठीक है ना? आपने उर्दू की एक मिसाल है कि सलीका मंदी से रहो, चीजों को सॉर्ट आउट करके रखो. बिल्कुल इसी तरीके से रिलेशनशिप होते हैं. जब हम एक नए रिलेशनशिप को शुरू करते हैं तो जो हम अपना अपने साथ बैगेज लेके आए होते हैं, जो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हजार तरह के अब्यूसेस होते हैं, मेंटल अब्यूस है, फिजिकल अब्यूस है, बाज़ अवकात सेक्सुअल अब्यूसेस होते हैं, उन सब के जो एक्सपीरियंसेस हैं जब हम लेके एक मैरिटल लाइफ में एक ज़वाजी जिंदगी जब हम शुरू करते हैं तो यकीनन उसका असर पड़ता है. तो जब हम दो मुख्तलिफ लोग अपनी मुख्तलिफ दुनियाओं से एक घर में आते हैं तो जो मिसाल मैं देना चाह रही थी वो ये थी कि जो चीजें आपकी जरूरत की नहीं है या जो चीजें आप हर वक्त इस्तेमाल में नहीं कर रहे होते और बाज़ चीजों को हमें रखना पड़ता है, हम अपने जहन के स्टोरेज में एक ऐसी जगह पे obviously वो experiences, वो negative या positive experiences हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो कभी हमारी जिंदगी से जाते नहीं है, लेकिन हमें उनको हर वक्त अपने सामने मौजूद रखने की जरूरत नहीं है। हमें उनको जिस तरीके से जो सामान हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम उसे स्टोरेज में रख देते हैं, हम बाथ में रख देते हैं, एटिक में रख देते हैं, घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, घर को एक रेगुलर उसमें चलाने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से रिलेशनशिप में भी हमें करना पड़ता है। तो मैं नहीं जानती कि और क्या मसाइल हैं सब लोगों के, हर 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 फैमिली के, हर मैरिटल लाइफ के डिफरेंट मसाइल होते हैं। तो फिर लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है कि हम सबको पहले अपने पर्सनल मसले जो हैं वो देखने चाहिए कि मेरा अपना पर्सनल मसला क्या है, क्या जो मेरी मैरिटल लाइफ है उसमें मेरी अपनी कोई पर्सनल बिलीफ तो उसका असर नहीं कर रहे हैं। जब जैसे इसी की मिसाल ले लीजिए कि लोग जब शादी करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके चलते हैं, या वो समझते हैं कि जी इट्स देयर राइट, क्योंकि उनको घर से मोहब्बत नहीं मिल रही तो उनका हक है कि वो बाहर जाके बाहर की दिलचस्पियों में अपना वक्त करें। तो ये मैं समझती हूँ कि ये दोनों मियां बीवी को बैठ कर ये सोचना चाहिए कि जब उन्होंने एक रिश्ता शुरू किया है, एक जब वो घर एक शुरू करते हैं, तो उनका सिर्फ अपने अपने हकूक पे नजर मत रखें, अपने फराइज पे भी नजर रखें कि एज अ बीवी क्या मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, एज अ हस्बैंड मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ कि नहीं। ये दोनों को देखने की बात है। और ब्लेम करना बहुत आसान है एक दूसरे पे कि नहीं मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा है। हमें सबसे पहले, क्योंकि इंसान जो है वो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि मैं फलां को, मैं अपने मियां को कैसे बदल सकती हूँ, मैं अपनी बीवी को कैसे बदल सकता हूँ। कोई किसी को नहीं बदल सकता, अल्लाह से आप खुद बदल लाना चाहिए।
शादी इसमें एक सवाल यहाँ ये उभरता है कि बहुत सारे अवामल एक फैमिली को या एक शादीशुदा जोड़े को जिंदगी में मिलते हैं जिनकी वजह से उनकी जिंदगी बेहतरी या बदतरी की तरफ जा रही होती है। उसमें हमारे माशरती तहजीबी माहौलियाती बेशुमार चीजें हैं जो शामिल होती हैं। आप क्या समझती हैं कि ये जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं या दो मुख्तलिफ माशरों से, माशरती तहजीबों से मिलकर जहां से आकर लोग शादी कर लेते हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए ताकि उनको अपनी जिंदगी में आसानी हो?
सबसे बेसिक बात जो है वो है बेसिक रिस्पेक्ट की। एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल करें। जैसा कि मैंने कहा, दो मुख्तलिफ दुनियाओं से आए हुए लोग हैं, उनकी यकीनन सोच डिफरेंट है। एक तो ये अच्छी बात है, ये तो खूबसूरती है एक रिश्ते की कि दोनों एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी के लेके आए हैं। और जो एक मशहूर टर्म है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल के दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो, विच इज अ गुड थिंग। जरूरी नहीं है कि दोनों मियां बीवी को बिल्कुल एक जैसा हो जाना चाहिए। खूबसूरती यही है कि दोनों मुख्तलिफ हों, लेकिन जब दो मुख्तलिफ लोग एक दूसरे एक दुनिया में आते हैं और अपने आप को एक दूसरे में एक दूसरे को ढालते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी अपनी शख्सियत खत्म हो जाए, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, एक दूसरे को वो एक खास टर्म है कि
कंपनसेट
करते हैं। आई थिंक कंपेरिटी तब पैदा होती है और खूबसूरती तभी उस रिश्ते की बढ़ती है।
समीन, आप सुन रहे थे शाजिया मिर्जा, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं, फैमिली मैरिज थेरेपिस्ट भी हैं। उनका आज का प्रोग्राम इतवार का जो हमने पेश किया आपकी खिदमत में रिबेलियन एटीट्यूड पे था। आप अपने सवालात हमें एज यूजुअल ईमेल पे, टेक्स्ट से या टेलीफोन पे भेज सकते हैं और हम वो सवालात उनके पास ले जाएंगे और उनसे जवाब लेकर आएंगे। और जो भी उनका जवाब आपके सवालात होंगे आप अपने प्रोग्राम में सुन सकते हैं। सामिन, मैं वापस आ रहा हूँ फरमाइशों की तरफ। हमारे एक बहुत ही अच्छे गुलकार मसूद राणा, उनका एक गाना मैं आपकी खिदमत में इसे पेश कर रहा हूँ और फिल्म का नाम है जिगरी यार और गाने के बोल हैं, सोच कर यार बनावी बंदिया, यार बना के फेर ना सोची, सूली ते चढ़ जावी ओए।
यार बनावी बंदिया सोच के यार बनावी ओए सोच के यार बनावी बंदिया यार बना के फिर न सोची सूली ते चढ़ जामी ओए सोच के यार बनावी बंदिया सोच के यार बनावी ओए सोच के यार बनावी बंदिया होके इंज खलो जावा चीर ना सके मर भी जाइए ते दुनिया यारी चेते रखे जिगरी यार खुबाड़ाई ते जिगर दा खून बटामी ओए जिगरी यार खुबाड़ाई ते जिगर दा खून बटामी ओए यार बना के फेर न सोची सूली ते चढ़ जामी ओए सोच के यार बनावी बंदिया रनू औलाद जमीन ते जर तो यार यार बचामी ए चारे ने मिठे तोखे ए तोखे ना खामी यार दे रिश्ते नालों सका होर ना साक बनामी ओए यार बना के फेर न सोची सूली ते चढ़ जामी ओए सोच के यार बनावी बंदिया ए मर्दा दा प्यार ए मर्दा वेख डोल न जामी सा छड़ जावन साथ न छड़ी यारी तोड़ आवे टामी ओए यार बना के फेर न सोची सूली ते चढ़ जामी ओए सोच के यार बनावी बंदिया सोच के यार बनावी ओए सोच के यार बनावी बंदिया सोच के यार बनावी ओए सोच के यार बनावी बंदिया सोच के यार
सामिन आप सुन रहे थे मसूर राना की आवाज़ में सोच के यार बनावी बंदिया यार बना के फिर ना सोची सूली ते चढ़ जामी होए फिल्म थी जिगरी यार और ये बहुत ही खूबसूरत गाना था जो मसूर राना की आवाज़ में सुना आपने इसके लिए हमें मिसिसागा एल्बर्टो कनाडा हैलिफैक्स कनाडा मॉन्ट्रियल कनाडा से हमारे बेशुमार सामीन ने फरमाइश की थी जिनकी फरमाइश पे मैंने ये गाना पेश किया अगला गाना जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी मरहूम की आवाज़ में है फिल्म का नाम भाभी और चल उड़ जा रे पंछी और इस गाने के लिए हमें फरमाइशें अमृतसर जलंधर भारत से लाहौर पाकिस्तान चीचावतनी कामोखी शाहदरा मुल्तान खानपुर बावलपुर और सादकाबाद पाकिस्तान से ठट्टा पाकिस्तान हैदराबाद पाकिस्तान और कराची पाकिस्तान से आई हैं आप सब सामीन की ख्वाहिश पे मैं ये नगमा आपको पेश कर रहा हूँ आपके सुनने के लिए।
चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, दिन का चुन कर नगरी एक बसाई, तूने दिन का चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें, धूप में गर्मी खाई। गम ना कर, गम ना कर, जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई। अच्छा है कुछ ले जाने से, देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, वो ना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।
سامعین آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں چل اڑ جا رے پنچھی تیرا ختم ہوا ٹھکانہ۔ اس گانے کے لیے ہمیں کافی لوگوں نے فرمائش کی تھی، مجھے امید ہے کہ ان تمام سامعین نے جنہوں نے اس گانے کی فرمائش کی تھی، جن مقامات کا نام میں پہلے لے چکا ہوں، انہوں نے یہ گانا سن لیا ہوگا۔ اور جو اگلا گانا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ مکیش کا گایا ہوا گانا ہے اور فلم دھرم کرم، اور بہت خوبصورت گانا ہے۔ ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول۔
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। मैं कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला
Thank you.
पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे और होने वाली है अब रहना है थोड़ी। शर्म तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार गोरी तेने ना जोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला
सामिन आप सुन रहे थे मुकेश को एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल और फिल्म थी धर्म करम और ये हमने अपने उन सामिन की ख्वाहिश पर नशर किया था नगमा जिन्होंने हमें जलंधर अमृतसर सहारनपुर अहमदाबाद मुजफ्फरनगर इंडिया से ठठा पाकिस्तान हैदराबाद पाकिस्तान और लाहौर मुल्तान सरगोधा और फैसलाबाद और जनावाला पाकिस्तान से इस नगमे की ख्वाहिश हमें की थी लोगों ने। इसके अलावा टोरंटो मॉन्ट्रियल हैलिफैक्स वैनकूवर एक सिटी है और मिसिसागा यहाँ से हमें काफ़ी फरमाइशें मौसूल हुई थी इस गाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम सामीन ने गाना सुना होगा उनको पसंद आया होगा और आप हमें इसी तरह अपनी फरमाइशें भेजते रहिए और हम कोशिश रहेंगे कि आपकी फरमाइशें उसी दिन या उससे अगले दिन और अगर किसी वजह से थोड़ी सी देर होती है तो हम अपने तमाम सामीन से माजर चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि वो इस बात को समझेंगे। बाज़ दफ़ा हमारे आर्काइव्स में वो गाने मौजूद नहीं होते और बाज़ दफ़ा हमें उनको लाने के लिए थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ती है। मैं इस वक्त आपको एक गाना जो सुनवा रहा हूँ एक नात असल में मैं आपको सुनवा रहा हूँ ये आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये हम अपने सामीन की फरमाइश पर दोबारा नशर कर रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा का नजराना अकीदत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये नात कभी नहीं सुनी होगी और आप ज़रूर सुनिए इसको। और मैंने इस नात को हासिल करने के लिए संगीत के समंदर में एक गहरा गोता लगाया था और वहाँ से मैं ये नायाब हीरा ढूंढ के आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो सुनिए ज़रा चेहरे से कमली हटा दो।
जरा चेहरे से कमली को हटा दो या रसूल अल्लाह हमें भी अपना दीवाना बना दो या रसूल अल्लाह।
जगा दो या रसूल अल्लाह। अकेला छोड़ जाएंगे वहाँ हो फजल से तेरे वहाँ हो फजल से तेरे उजाला या रसूल अल्लाह जरा चेहरे से कमली को हटा दो
سامعین آپ سن رہے تھے جگجیت سنگھ چھترا اور جگجیت سنگھ چھترا کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا نذرانہ ذرا چہرے سے کملی ہٹا دو یا رسول اللہ یہ ایک بہت ہی ریئر نعت ہے جو میں آپ کے لیے نکال کے لایا تھا مجھے امید ہے کہ آپ سب کو پسند ہم نے اس نعت کو گزشتہ پروگرام میں دو تین دفعہ پیش کیا ہمارے چاہنے والوں نے سننے والوں نے اس کی فرمائش کی ان سب سننے والوں کی فرمائش پہ میں نے یہ گانا دوبارہ نشر کیا ڈونٹ گو اوے وی ول بی بیک آفٹر شارٹ بریک آئی پی ایس نیوز ریڈیو کی اردو نشریات آپ سن رہے ہیں ہمارے انٹرنیٹ اسٹریمنگ پہ لائیو سننے کے لیے آپ www.blogtalkradio.com/ipsnewsnetwork یا www.spreaker.com/ipsnewsnetwork پہ جا کے آپ ہمارے انٹرنیٹ کی اسٹریمنگ لائیو سن سکتے ہیں اگر آپ کسی وجہ سے ہمارا لائیو پروگرام نہیں سن سکے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے ہمارے تمام پروگرام سن سکتے ہیں آئی ٹیونز پہ آئی کلاؤڈ فیس بک ٹویٹر لنکڈن مائی اسپیس بلاگر اور گوگل پلس پہ ہمارے تمام پروگرامز موجود ہیں آپ براہ راست ہمارے آرکائیوز کسی بھی سرچ انجن میں آئی پی ایس نیوز ریڈیو ڈال کے جا سکتے ہیں اور ہمارے آرکائیو سے آپ ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں اگر آپ کسی وجہ سے ہمارے پروگرام نہیں سن سکے تو آپ ان پہ جا کے سن سکتے ہیں ہمارے تمام کرم فرما جو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی فرمائشوں کا کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا پروگرام لائیو سننا چاہتے ہیں اور ان کی گاڑیوں میں سیٹلائٹ ریسیورز موجود نہیں ہیں تو وہ 347-996-3477 پہ ڈائل کر کے ہمارا پروگرام لائیو سیل فون پہ یا گھر کے فونوں پہ سن سکتے ہیں یہ فری کال ہیں ان کی آپ کو کوئی ایکسٹرا قیمت لائک جیسے آپ دوسری کالیں کرتے ہیں پیڈ اس طرح کی کوئی ان کی قیمت نہیں ہے لیکن آپ کو آپ کے ٹیلی فون کی کال جس طرح ریگولر کال پڑتی ہے فری کال یہ اس طرح کی فری کال ہے نمبر میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں 347-996-3477 اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے لائیو پروگرام اپنی گاڑی میں اپنے سیل فون پر یا اپنے گھر سے अपने फोन पे, घर के फोन पे करके आप सुन सकते हैं। हमारी नशरियात आईपीएस न्यूज की जारी है और मैं एक और आपके लिए अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हम अगले हफ्ते से अपने तमाम सामेईन जो हमसे लाइव बात करना चाहते हैं, हम उनसे लाइव कॉल्स उनकी टेकअप करेंगे। नंबर है 347-996-3477 और आपको ऑप्शन 1 दबाना होगा अगर आप होस्ट हबीब हयात से बात करना चाहते हैं, और अगर आप सिर्फ प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो आप ये नंबर डायल कीजिए और 347-996-3477 ये आपको ले जाएगा डायरेक्ट हमारे प्रोग्राम पे। नंबर में एक दफा फिर दोहरा देता हूँ, 347-996-3477। इस नंबर पे अगर आप डायल करके अपने घर के फोन से या सेल फोन से हमारा लाइव प्रोग्राम सुनना चाहें, अपनी गाड़ी में या अपने घर में, अगर आपके पास रिसीवर नहीं है तो आप इस नंबर पे डायल करके सुन सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम के होस्ट हबीब हयात से बात करना चाहते हैं, को मशवरा देना चाहते हैं, अपनी फरमाइश देना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर को डायल करके ऑप्शन 1 को अगर दबाएंगे तो आप डायरेक्ट मेरे पास आ जाएंगे। हम अगले हफ्ते से अपने तमाम सामीन की लाइव कॉल्स लेंगे, बनिस्बत इसके कि वो हमें ईमेल्स और टेक्स्ट के ज़रिए अपनी फरमाइशें भेजें या स्काइप पे या फेसबुक पे अपनी फरमाइशें भेजें, हम राइट अवे इस प्रोग्राम में उनकी फरमाइशें लेंगे। मैं अपने सामीन को याद दिलाता चलूँ, हमने एक अपने सामीन से दरख्वास्त की थी 2016 में अमेरिका में मुनक्कद होने वाले सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से न्यू जर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी, जो बहुत ही नुमाया उम्मीदवार के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं इस वक्त तक, वो इस वक्त 2 स्कैंडल्स का शिकार हैं जिसकी वजह से उनका लोगों का कहना है कि उनकी सदारती बिट जो है वो रुक जाएगी। और हिलरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी की एक बहुत ही नुमाया उम्मीदवार के तौर पे उभर के सामने आ रही हैं। डोंट गो अवे, वी विल बी बैक विद अ मिनट। माज़रत चाहता हूँ सामीन आपसे, एक लम्हे के लिए हमारे प्रोग्राम में वक्फा आया। मैं बात कर रहा था हिलरी क्लिंटन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की एक बहुत ही नुमाया उम्मीदवार के तौर पे उभर के सामने आ रही हैं, और मैंने अपने तमाम सुनने वालों से, करम फरमाओं से पूछा था कि आया उनकी राय में उनको 2016 के सदारती इंतखाबात में कौन सा उम्मीदवार बहुत स्ट्रांग और मुनासिब लगता है। हमारे 75% सुनने वाले सामईन ने और दीगर सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स ने हिलरी क्लिंटन के हक में वोट दिया है। उनका ख्याल है कि हिलरी क्लिंटन एक मजबूत सदारती उम्मीदवार के तौर पे डेमोक्रेटिक पार्टी से उभर के आएंगी और 2016 के इलेक्शंस में उनके कामयाबी के बहुत वाजे इम्कानात हैं और उनसे लोगों को बहुत सारी तवक्कोआत हैं। तो देखते हैं सामीन के हिलरी क्लिंटन अपना क्या डिसीजन लेती हैं इस बारे में, और आया वो डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाया उम्मीदवार होके नॉमिनेट होंगी या वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। इधर रिपब्लिकन पार्टी में गवर्नर क्रिस क्रिस्टी, जो न्यू जर्सी के गवर्नर हैं, उनके हालिया 2 स्कैंडल्स, जो एक फोर्ट ली की काउंटी में पेश आया और दूसरा उनके डिप्टी गवर्नर के साथ पेश आया, उससे उनकी सियासी कैरियर पर थोड़ा सा धचका लगा है, और इस मौके से फ़ायदा उठा के मुख्तलिफ हलकों ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के नाम लेने शुरू कर दिए हैं, जबकि क्रिस क्रिस्टी बहुत ही मजबूत इस वक्त उम्मीदवार हैं, वो हिलरी क्लिंटन से भी वोटों में लीड इस वक्त रखते हैं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे। और अब देखना ही कि ये आया स्कैंडल्स जो हैं उनके इस प्रेसिडेंशियल बिड पे असरअंदाज होंगे या वो इनसे निकल जाएंगे और नॉमिनेशन रिपब्लिकन पार्टी का सदारती उम्मीदवार के लिए सन 2016 में हासिल कर लेंगे। हम आपको इस बारे में तमाम हालात से आगाह रखेंगे, वक्तन फ़वक्तन हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। हम आपको इस्लामी तंजीमों के बारे में अपने आइंदा हर हफ्ते के प्रोग्राम में रिपोर्टें देंगे। सामीन, इस वक्त जो मैं आपको रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ वो गन वायलेंस पे, बढ़ते हुए गन वायलेंस पे अमेरिका में और दुनिया के दीगर ममालिक में, जिस पे मुख्तलिफ लोगों का ख्याल है कि ये गन वायलेंस उन वीडियो गेम्स और इंटरनेट गेम्स की वजूहात की बिना पर फैल रहा है, जो अमरीका, मगरबी ममालिक या इवन मशरक़ वस्ता और साउथ ईस्ट एशिया, एशिया में मौजूद बच्चे खेलते हैं और उनके इंतहाई दिलदादा हैं। उनका बेशतर वक्त इन वीडियो गेम्स को खेलने में गुजरता है। तो आप भी सुनिए ये रिपोर्ट क्या कहती है।
Ladies and gentlemen, my name is Total Biscuit. It's that time again, isn't it? It's a sad state of affairs that this should keep happening, but it does. As you are probably aware, a couple of days back, a 20-year-old man by the name of Adam Lanza walked into a school in Connecticut and murdered 20 children before turning the gun on himself. As is sadly usual in these kind of tragedies, we have a great many people, most of them in the media, willing to jump at the chance to make a lot of money from politicizing and covering a tragedy in the greatest possible detail, whether or not that detail is actually true. More to the point, there are strong arguments that the media is essentially an accomplice in school shootings, and as a direct result of intense media coverage, turns the shooter into an infamous anti-hero, as opposed to focusing on the victims and what could best be done to help and prevent such tragedies in the future. Speaking on Charlie Brooker's Newswipe 3 years ago, Dr. Park Dietz, a forensic psychiatrist, gave his opinion rather clearly.
Well, if you want to know why not ask a forensic psychiatrist?
We've had 20 years of mass murders, throughout which I have repeatedly told CNN and our other media, if you don't want to propagate more mass murders, don't start the story with sirens blaring.
The school day had only just begun when the attacker struck.
Don't have photographs of the killer.
The 17-year-old's three-hour rampage ended in his own death.
Don't make this 24/7 coverage.
The German Chancellor is about to give her reaction. We'll bring that to you live.
Do everything you can not to make the body count the lead story.
Carnage in the classroom. 16 people are dead.
Not to make the killer some kind of anti-hero.
Dressed in black combat gear, the gunman opened fire at random.
Do localize this story to the affected community and make it as boring as possible in every other market. Because every time we have intense saturation coverage of a mass murder, we expect to see one or two more within a week.
But now, before anyone makes the mistake of construing what I'm about to say as a criticism of the American media alone, please note that that entire clip was based on BBC News, which is, of course, a UK-based organization. Several of the publications I will be criticizing today also happen to be UK-based publications, so please do not misconstrue this as a full-on condemnation of American media. This problem is somewhat worldwide. But the media likes to give two sources, right? At least that's what they're supposed to be doing, so why don't I give you another one? This is from an article posted on Psychology Today in April of this year. It's written by Joseph Grenny. He is a behavior change expert and four-time New York Times best-selling author. He kind of knows what he's talking about, and he too argued that the media is an accomplice in school shootings, arguing that the media amplified the violence by naming the shooter, describing his characteristics, detailing the crime, numbering the victims, and ranking him against other successful attackers. A chilling example given by the article is that on February the 2nd, 1996, a 14-year-old boy walked into his Moses Lake Junior High School algebra class and started shooting. So he killed several people. He was, in fact, arrested, and the media blitz surrounding it.
आप सुन रहे हैं IPS न्यूज रेडियो की उर्दू सर्विस। इसमें हम आपको एक खसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं वीडियो गेम्स के वायलेंस के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुन रहे होंगे।
Source of detail. It also turned out that they emphasized a line that he had quoted from a Stephen King novel, a novel by the name of Rage. And as a result, there was a huge amount of coverage, and indeed, he actually became an anti-hero, some kind of horrible cultural icon. What happened? Within a week, there was another school shooting, then another one a few weeks later, and then another a few weeks later, and then 2 days after that, yet another. It's an interesting thing to note, is it not, that the media decided its focus would be a piece of literature, and indeed a quote that was given by the disturbed individual in question. Why was the focus on Stephen King's rage? Why is that? Why was the focus not on exactly what was wrong with the killer in question, what obvious mental illness this guy actually had? Why was the focus not on concerns for the failing mental health system, the gunman's ready access to firearms, or in fact, perhaps more importantly than anything else, rising above all of the debate and politicization of these kind of issues, the actual victims? These are the people that deserve attention. These are the people that deserve sympathy, pity, and all the help that we can possibly give by the families that are torn apart by these kind of acts. Why is it that the only interest the media seems to have in the victims and those related to them is the notion of getting sound bites from traumatized seven-year-olds? Why is that the case? Why is 98% of the focus of the media on the killer himself, turning him into some kind of depraved cultural icon and a benchmark by which other psychotics rate themselves? And of course, why does the old guard media in the form of television and print news have an obsession with blaming some kind of other form of media for the actual tragedy? Let's give a few examples from this recent occurrence, shall we? UK tabloids, let's start with them, because they are, as far as I'm concerned, one of the most depraved and morally bankrupt examples of journalism in the world today. The Sun, for instance, embarrassingly, I must say, the most popular newspaper in the UK, began with a front-page spread detailing killer's Call of Duty obsession, followed up, of course, by a double-page spread inside with huge white letters and a black stroke surrounding it just to make sure you can't miss it. Black Ops Bunker. Killer lived in windowless lair playing violent video games surrounded by posters of weapons he plotted massacre. Call of Duty Rampage's link is the claim. A rather strange claim to be making, of course, considering that the Sun itself has covered Call of Duty over the past few months in a very positive light, hyping the game up, even providing information about a launch event that allowed Call of Duty players to get a hold of Black Ops ahead of release, a preview section claiming that Black Ops 2 was set to be the shooter of the future, and upon the game's launch describing it as graphically the game is sublime, something the series' reputation is built on. It's not subtle or tactile, it's pure, unadulterated warfare. Interesting, is it not, how quickly opinions will change when they know that newspapers will be sold as a result? Would you like something even more ridiculous? Oh, don't worry, I have it right here. The Daily Express quoted as saying, chillingly, his favorite video game was said to be a shockingly violent fantasy war game called Dynasty Warriors, which is thought to have given him inspiration to act on his darkest thoughts. Dynasty Warriors, a long-running series of Japanese hack-and-slash games based on the Romance of the Three Kingdoms novels. A game which contains no bloody violence of any description, doesn't have decapitations, doesn't have the removal of limbs, in fact, blood spurts are not even shown on the screen. Also a game in which, more often than not, it is actually impossible to kill the characters that you are attacking. They will simply run off injured and come back later. The whole game, of course, presented in a rather colorful, cartoony style with absolutely no predications whatsoever of being a realistic depiction of ultra-violence. Indeed, the closest thing you will get to an AR-15 semi-automatic carbine in that game is a wooden cannon. Speculation has also arisen surrounding the role of Mass Effect, the series of sci-fi RPGs, because the killer's brother had the audacity to like a Facebook page. This resulted, of course, in hysteria, and a large number of people condemning the game and calling for it to be banned without any actual knowledge of what it was or who indeed was playing it. Just a reminder, by the way, if we were to talk about Mass Effect 3, this is the game where the main character is tormented for the entire duration by the needless death of a single innocent child. And this is a game which apparently encourages the massacre of school children. I think, quite frankly, the only virtual reality that's going on here is the one that's being lived in by media talking heads. But let us not forget what is most important. The fact of the matter is that these people do not actually believe what they're saying. They are putting together a narrative that they believe the kind of people that watch television news and read tabloids actually want to hear. They believe that this is what will interest them. They believe that this is what will drive up the ratings and, as such, will sell more advertising space. Or, in the case of newspapers, sell more copies. It would be unsurprising if most of you refer to this as preaching to the choir. And you're right. I don't like doing this. I hate getting even close to anything political. And quite frankly, you guys know that video games do not cause violence. There is, in fact, no proof of that whatsoever. Studies have repeatedly found that there is no link whatsoever between increased violent behavior and consumption of violent video games. Indeed, if you'd like to fall into the correlation equals causation fallacy, that it would appear that many news organizations and a lot of very dumb people around the world trumpet from the rooftops, then you would like this statistic, no doubt. A report by the Secret Service, no less, a couple of years ago, found that the most common form of entertainment for school shooters was written violence, that being in 37% of cases, while video games only accounted for 11%. This doesn't even mean that written violence actually causes this kind of behavior, far from it, but it does indicate that, in fact, video games are the least common form of entertainment for those that perpetrate school violence. If you need another statistic, here are a few graphs provided by the Washington Post blog. This shows a sample of 10 countries for gun-related murders and video game consumption, attempting to find some kind of link. And what it clearly demonstrates is, in fact, that the United States is very much an outlier here, and the other 9 are, in fact, nowhere close, and the line does not correlate in any way, shape, or form. Or perhaps you'd like this graph. Now, this is the number of crime victims per capita in the US, correlated with the release of some of the more popular and controversial violent video games released over the past 20 or so years. Now, let's not fall into the trap of those who are misguided or deliberately misleading people, the idea that correlation equals causation. This does not mean that video games are reducing crime. That is a fallacy. Those are two unrelated things that happen to correlate, and the assumption is being made that one caused the other. That is not how statistics work. I can give you a couple more statistics, though, if you like. The purpose of me giving you these is either so that you can actually use them in a discussion with someone that genuinely believes that video games do cause violence. Perhaps it may be your parents, your teachers, other peers, or just someone you randomly meet that happens to be pressing this view onto you, whether it be in real life or on the internet. Let's take a look at this, shall we? This was taken from CNN yesterday and displays a rather violent and horrendous video game by the name of StarCraft II, which is, of course, a sci-fi strategy game with absolutely no basis whatsoever in reality. Would you like to know a country that's a particularly large haven for StarCraft? Well, yes, that would, of course, be South Korea, the country that turned StarCraft Brood War into a national televised sport, a country with a massive video game culture. Would you like to know how many school shootings have been happening in South Korea lately? Zero. Would you like to know how many school shootings have occurred in South Korea across pretty much all known history? Zero. It goes on and on and on, and there are mountains of statistics that you can use, mountains of evidence that you can use that clearly shows there is no link whatsoever between these shootings and video games. What is always...
Samin, aap sun rahe the video games aur gun violence pe ek tajziya jo hume hamare ek chahne wale ne bheja tha extract hum uske de rahe the aur aapne suna ke mahirin jo usme jo mahir guftugu kar rahe the unhone jo apna tajziya pesh kiya hum unke tajziye se IPS news radio jo hai wo apne sarfin ko apne samin ko متعارف کرانا چاہتا تھا اور مستفیض کرانا چاہتا تھا تو ہمیں امید ہے آپ نے تجزیہ سنا ہوگا ویڈیو گیمز سے اور ان تمام ماں باپ جو اپنی اولاد کے ویڈیو گیمز اور دیگر چیزوں کے کھیلنے پر جزبز ہیں ان کے لیے ہم نے یہ تجزیہ پیش کیا تھا ہمیں امید ہے کہ ان کو اس سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی سامعین میں ہمارے پروگرام کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے میں جانے سے پہلے آپ سب کو ایک دفعہ پھر یاد کرانا چاہتا ہوں ہمارے انٹرنیٹ اسٹریم پر آپ لائیو دیکھنے کے لیے www.blogtalkradio.com/ipsnewsnetwork یا www.spreaker.com/ipsnewsnetwork اس کے علاوہ آپ ہمارے تمام سوشل میڈیاز جس میں یوٹیوب فیس بک MySpace, Twitter, LinkedIn, Google Plus, iCloud, iTunes اور بلاگر شامل ہیں ہمارے آپ یہ اسٹریمس دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں تو آپ 347-996-3000 3477 डायल करें। अगर आप सिर्फ प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो आप इस नंबर को डायल करें, ये फ्री कॉल है, आपको इसकी कॉल एज यूजुअल जिस तरह सेल फोन्स के प्लान में फ्री कॉल्स हैं, ये उसी तरह एक फ्री कॉल है। बैरून ममालिक से जो हमें हमारे सामीन कॉल करते हैं उनके लिए कॉल कॉस्ट करती है, लेकिन हमारे तमाम उन सामीन के लिए जो अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में मौजूद हैं उनके लिए कॉल फ्री कॉल के तौर पे सेल फोन्स के प्लान में या घर के फ़ोन से आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम सुनने के लिए। अगर आप होस्ट हबीब हयात से बात करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 1 दबाना पड़ेगा, और हम अगले हफ्तों से आपको याद कराते चलें, अगले हफ्ते से हम अपने प्रोग्राम्स में तमाम सुनने वाले लाइव कॉलर्स की कॉलें लेंगे और उनके जवाब भी उसी वक्त उनको देंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे तमाम सामीन हमारा प्रोग्राम सुनते रहेंगे और हमें अपनी आरा से नवाजते रहेंगे, हम उन आरा की रोशनी में अपना बेहतर प्रोग्राम आपके खिदमत में पेश करेंगे। IPS न्यूज रेडियो का उर्दू प्रोग्राम जो हफ्ते में 7 दिन 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जारी रहता है, आप लाइव सुन सकते हैं अगर सैटेलाइट रेडियो है आपकी गाड़ी में, नहीं तो 3479963477 पे डायल करके आप सुन सकते हैं। हम अपने तमाम उन सामीन और करम फरमाओं के शुक्रगुजार हैं जो हमें अपनी तजावीज और मुख्तलिफ ममालिक से अपनी फरमाइशें भेजते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे तमाम सामीन हमारे साथ हमारे प्रोग्राम को सुन के महसूस होते होंगे। आप अपनी आरा हमें भेजते रहिए, हम इन प्रोग्राम्स को बेहतर तौर पर आपके लिए तरतीब देंगे। आपने आज हमारे प्रोग्राम में शाजिया मिर्ज़ा वीडियो वायलेंस गन वायलेंस पे एक तजिया सुना और हिलरी क्लिंटन के मुतालिक आपने हमारी रिपोर्ट सुनी। हम अगले प्रोग्राम में आपके लिए मज़ीद ऐसी रिपोर्टें लाएंगे। मैं अपने तमाम सामईन को खुदा हाफिज़ कहता हूँ, हबीब हयात की जानिब से अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।